1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का मूल्यांकन। 1892 के अधिनियम के पक्ष में केवल इतना ही कह सकते हैं कि निश्चय ही अधिनियम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से उन्नति की ओर एक पग था। इस अधिनियम द्वारा विधान मंडलों के कार्यों में विस्तार कर दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे तथा इस प्रकार कार्यकारिणी से जो सूचना चाहे प्राप्त कर सकते थे। संभवतः भारत के इतिहास में पहली बार जनता के प्रतिनिधियों को चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे यह अधिकार दिया गया कि वे शासकों से सूचना स्वाधिकारण प्राप्त कर सकते थे। चालू वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा अगले वर्ष के लिए बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। सदस्यों को बजट पर साधारण विचार करने था, व्यय में कमी था, बढ़ोतरी के लिए सुझाव देने का अधिकार मिल गया था। फिर भी भारत के इतिहास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसे भारतीय इतिहास में ऐसा अधिकार कभी नहीं दिया गया था इससे पहले। यद्यपि ये दोनों अधिकार ऐसे नहीं थे जिससे सरकार की नीतियां प्रभावित हो सकती थी, परंतु ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि जनता को अपने देश में हो रही घटनाओं के विषय में अधिकृत सूचना प्राप्त हो सके तथा ये लोग देश के वित्तीय विवरण पर अपने विचार व्यक्त कर सके। जबकि विधानमंडलों के अधिकार बढ़ गए थे, देश के सबसे प्रतिभाशाली लोग इसमें आने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रास बिहारी घोष तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख भारतीय नेता तथा बुद्धिजीवी विधानमंडल में प्रवेश कर गए। इसे वाकपटु तथा राजनीतिक बुद्धि ने शिक्षित भारतीयों को संसदीय शक्ति तथा देशभक्ति को पर्याप्त मात्रा में व्यक्त किया। केंद्र में अतिरिक्त सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या 1870 के अधिनियम में दी गई संख्या से 4 बढ़ा दी गई। बंगाल, मद्रास तथा बंगाल के परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 20 कर दी गई। इनमें से 9 पदाधिकारी, 4 मनोनीत और राज्य के तथा 7 निर्वाचित सदस्य होते थे। निर्वाचन मंडल में नगर पालिकाओं तथा जिला बोर्डों के सदस्य, विश्वविद्यालय तथा व्यापार मंडल के विशेष पद्धति के अनुसार निश्चित के सदस्य भाग ले सकते थे। चुनाव की प्रक्रिया यद्यपि निहित थी, स्पष्ट नहीं, सन 1892 के अधिनियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक पथ था। यद्यपि भारतीय शासनकाल बहुत दूर की बात थी, फिर भी कुछ न कुछ तो अवश्य आरंभ हो गया था। इस अधिनियम के सबसे प्रमुख त्रुटि यह थी कि इस प्रकार का समझौता था जो अनिच्छा से पारित किया गया था तथा इसके राष्ट्रवादी इससे असंतुष्ट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम की बार बार आलोचना की। इस घुमावदार निर्वाचन पद्धति के आलोचकों ने कड़ी निंदा की। कहा गया कि स्थानीय निकायों को चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार का इनके द्वारा मनोनीत करना ही है और यह भी सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को स्वीकार करें अथवा न करें। विधानमंडलों की शक्तियां बहुत ही कम थी। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। सरकार कारण बनाए बिना इतने प्रश्न का उत्तर देने से इनकार सकते थे और इसका कोई उपचार नहीं था। परिषदों को बजट पर भी कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। चुनाव के नियम भी अत्यंत असंतोषजनक थे। कुछ वर्गों को कोई प्रतिबंध नहीं मिला, स्थानियों को अत्यधिक। बंबई में यूरोपीय व्यापारियों को 2 स्थान दिए गए, भारतीयों को 1 भी नहीं। सिंधु को 2 स्थान दिए गए, पूर्ण था सतारा जो महत्व में सिंध से कहें थे प्रभावशाली थे, को 1 भी नहीं। गोखले के शब्दों में, अधिनियम के वास्तविक प्रचलन ने ही उनके खोखले पद का प्रदर्शन किया। बंबई प्रेसिडेंसी को 8 सीट मिले, भारत सरकार के नियमों द्वारा उसमें 2 बंबई विश्वविद्यालय था नगर नियम को दे दिए गए। बंबई सरकार ने 2 स्थान यूरोपीय व्यापार समुदाय को दे दिए तथा 1 स्थान दक्कन के सरदारों को दिया था। 1 सिंध के जमींदारों को केवल 2 स्थान साधारण जनता को मिले। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1892 का अधिनियम यद्यपि कांग्रेस की मांगों से अत्यधिक कम था, परंतु यह समकालीन स्थिति से निश्चय ही विकास की ओर एक कदम था। प्रतिनिधियों के चुनाव था विधानमंडल को कारणी पर थोड़ी सी प्रभावित करने की शक्ति देकर इस अधिनियम ने संसदीय उत्तरदायी सरकार के आरंभ करने के मार्ग का निर्माण किया। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में फिरोजशाह मेहता का विचार। यह सरकारी विधेयक का सबसे उपयुक्त वर्णन है कि यह एक सर्वोत्तम वाष्प इंजन है जिसमें वाष्प उत्पन्न करने की आवश्यक सामग्री अत्यंत ध्यानपूर्वक निकाल दी गई है और उसके स्थान पर एक रंगदार कृत्रिम वस्तु दी गई है जो उसके सदृश लगे। दादा भाई नौरोजी, हमारे विधान परिषद एक प्रशासन है नहीं प्रशासन से भी अधिक बुरी है। प्रायः विश्वास किया जाता है कि इस परिषद द्वारा भारत को लगभग वही प्रतिनिधित्व मिल गया जो इंग्लैंड में प्रतिनिधि सरकार के रूप में मिला हुआ है तथा इसके द्वारा भारतीयों को अपनी सरकार को कुछ कहने का अवसर मिल गया है। यह तो केवल एक भ्रम है, हम सभी उद्देश्यों तथा अभिप्रायों के लिए निरंकुश सरकार के अधीन है। मंटफोर्ड रिपोर्ट। 1872 में हमारे लोग कहते थे कि हमारा चाहिए कि हम सुने कि हमारे द्वारा चुने हुए कुछ भारतीय लोग हमारे कानूनों के विषय में कहते थे। 1889 में कहते थे कि हमारे कानूनों को भारतीय पार्षद आलोचना से निश्चय लाभ हुआ। आओ हम इससे भी अधिक यह परामर्श करने की यदि संभव हो तो उस लोगों को भी व्यक्तियों को जिनमें हमें परामर्श दिया है चुने कर अनुमति दे। 1892 का अधिनियम परिषदों को इस बात का अधिकार देता है कि वो प्रश्न पूछ सके, बजट पर वोट तो नहीं कर सके परंतु उसकी विवेचना अवश्य कर सके। इस सीमित क्षेत्र तक हम देते हैं कि इसमें यह स्वीकार किया गया है 1861 के निर्णय के विरुद्ध कि अब से परिषदों का कार्य केवल परामर्श था वैधानिक कार्य से युक्त होगा। गोपाल कृष्ण गोखले। अतिरिक्त सदस्यों के चुनने के लिए सब परिषद गवर्नर जनरल को दी गई शक्तियों के अधीन बनाए गए नियमों पर टिप्पणी करते हुए गोखले ने लिखा, मित्रों इस अधिनियम को संपन्न करने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए बनाए गए नियमों के विषय में मैं यह नहीं कहूंगा कि जानबूझकर इसे बनाए गए हैं जिससे 1892 के अधिनियम के उद्देश्य विफल हो जाए, परंतु मैं यह अवश्य कहूंगा कि जिन पदाधिकारी ने यह नियम बनाए हैं यदि उसे कहा जाता कि वह बैठकर ऐसी योजना बनाए कि जिसका निश्चित उद्देश्य यदि नियम को विफल करना हो तो वह इससे अधिक अच्छा कार्य नहीं कर सकता था। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा BA प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के लिए SJSPAR और ग्रोवर की पुस्तक से सुजीत कुमार के लिए किया गया है।